जैसे ही राजपुरोहित जी ने त्रिशान और आकांक्षा से जाह्नवी की शादी में जाने की बात कही, त्रिशान बिना कुछ बोले उनके कक्ष से बाहर आ गया। वो जाह्नवी की शादी का सुनकर दुखी हो गया। उसे इस वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत है, उसके जाते ही राजपुरोहित जी ने कहा। मैं उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ। हमारा प्यार हमें नहीं मिलता है तो कितना दर्द होता है, ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, आकांक्षा ने उदास होकर कहा। लेकिन एक रिश्ते के चक्कर में आप अपनी पूरी उम्र बर्बाद करो, ये भी तो सही नहीं। त्रिशान को हाँ या ना कहना जाह्नवी का फैसला था। जब वो उसे पसंद नहीं करती तो उस पर अपना प्यार थोपना भी तो सही नहीं है, राजपुरोहित जी ने कहा। मैं त्रिशान को देखती हूँ, कहकर आकांक्षा वहाँ से बाहर चली आई। बाहर आते ही उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे त्रिशान कहीं नज़र नहीं आया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित कर त्रिशान को ढूंढने की कोशिश की। थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करने के बाद आकांक्षा ने देखा कि त्रिशान राजपुरोहित जी के कक्ष से बाहर निकल रहा था। ये प्यार इतनी तकलीफ क्यों देता है? आखिर मेरी क्या गलती है कि मैं एक सामान्य इंसान नहीं हूँ और तुम हो? मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, उसके बावजूद तुम किसी और से शादी कर रही हो। तुमने मुझसे सोचने के लिए टाइम मांगा था और मैंने तुम्हें टाइम दिया भी। मैं यहाँ तुम्हारी हाँ का इंतज़ार करता रहा और तुम मुझे जवाब देने के बजाय किसी और से शादी कर रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो जाह्नवी? ऊपर से मुझे अपनी शादी में किस खुशी में इनवाइट किया है? त्रिशान गुस्से में बड़बड़ाता हुआ राजपुरोहित जी के कक्ष से बाहर निकल रहा था। वहां से बाहर निकलकर वो हमेशा की तरह पहाड़ों पर चढ़ने लगा। आकांक्षा ने आंखें खोलीं और कहा, मैं भी ना, हर बार भूल जाती हूँ कि त्रिशान जब परेशान होता है तो ऊपर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है। बेवजह मैंने अपनी शक्तियाँ, टाइम और एनर्जी तीनों ही वेस्ट कर दी। आकांक्षा वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ी और जल्दी से पहाड़ चढ़ते हुए त्रिशान के पास पहुँची। वो वहाँ के सबसे ऊपरी पहाड़ पर बैठा था। वो जगह ज़मीन से काफ़ी ऊँचाई पर होने की वजह से वहाँ पर नीचे के मुकाबले ज़्यादा ठंड थी। तुम्हें क्या नाराज़ होकर यहीं आना होता है? आकांक्षा ने अपने हाथ रगड़ते हुए बोला, ताकि वो खुद का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रख सके। और हर बार दादू को तुम्हें मेरे पीछे भेजना ज़रूरी होता है? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं, इन सभी पहाड़ों पर चढ़ जाऊं, जंगलों में दौड़ लगाऊं, त्रिशान ने गुस्से से कहा। अरे बस बस, इतना सब एक साथ करोगे तो थक जाओगे। तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जाह्नवी तुम्हें अपनी फ्रेंड के अलावा और कुछ नहीं समझती। और सोचो, वो कुछ तो समझती है ना, तभी अपनी शादी में बुलाया है, आकांक्षा ने उसे मनाने के लिए कहा। त्रिशान, इससे अच्छा कुछ ना ही समझती, मुझे नहीं जाना और मैं क्या करूँगा उसकी शादी में जाकर? वहाँ जाकर चन्ना मेरेया ही गा लेना, लेकिन शादी में तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जाने वाली, आकांक्षा ने हंसते हुए कहा। हाँ, तुम भी उड़ा लो मेरा मजाक। तुम्हें मेरे दर्द का एहसास तब होगा जब तुम्हारा प्यार तुम्हारी आंखों के सामने किसी और से शादी कर रहा होगा, त्रिशान ने उदास होकर कहा। अच्छा बाबा, सॉरी, इस बार नहीं परेशान करूंगी। पता है ना, वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, उस जन्म में नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म में। लेकिन वो होगा कहाँ? कभी कभी तो सोचकर डर लगता है कि कहीं कहीं उसने मुझे पहचाना नहीं तो, आकांक्षा रिवांश के बारे में सोचकर उदास हो गई। त्रिशान का मूड भी ठीक नहीं था, उसके बावजूद उसने आकांक्षा को उदास देखा तो उसका मूड सही करने के लिए कहा, तो जाकर उसके सर पर जोर से डंडा मारेंगे और उसे सब याद आ जाएगा। आकांक्षा, उसे सब याद तो आ जाएगा ना? अगर उसे याद नहीं आया तो उसे हमारी बातों पर यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होगा। ये सब चीज़ें वही समझ सकता है जिसने इन्हें फील किया हो, वरना सब इसे मजाक या दिमागी पागलपन के अलावा कुछ नहीं समझते। क्या सच में उसकी शादी में चलना होगा? त्रिशान ने बात को बदलते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि आकांक्षा रिवांश के बारे में सोचे और परेशान हो। बीते 3 सालों में उन दोनों ने काफी वक्त साथ बिताया था। इस वक्त में ऐसा कोई भी पल नहीं बीता होगा जिसमें आकांक्षा ने रिवांश को याद नहीं किया होगा। हाँ, चलना होगा। मैं भी तो देखूं कि उसने मेरे नए फ्रेंड को छोड़कर किसे चुना है। अगर कोई ऐसा वैसा हुआ तो उसकी शादी तुड़वा कर लेंगे, आकांक्षा ने हंसते हुए कहा। साउंड्स गुड। अगर उसकी शादी टूट गई तो फिर मैं उससे शादी कर लूंगा और इस बार उसे मैं कन्विंस करके रहूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। आकांक्षा से बातें करके त्रिशान का मूड ठीक हो गया था। उसने जैसे तैसे खुद को जाह्नवी की शादी में जाने के लिए मनाया। अच्छा आकांक्षा, तुम क्या शादी में गई योद्धा वाले कपड़े पहनकर जाओगी या फिर अपने वही ट्राउजर्स और टी शर्ट? ऐसे कपड़ों में देखकर कहीं तुम्हारी फ्रेंड नाराज ना हो जाए तो क्यों ना हम शॉपिंग पर चलें, त्रिशान ने कहा।
हाँ आइडिया अच्छा है। शॉपिंग करने जाएंगे तो अपने लिए एक नया मोबाइल भी ले आएंगे। इतने दिनों तक तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब शादी में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करेंगे। जैसे ही आकांक्षा ने नया मोबाइल लाने की बात कही तो त्रिशान ने हंसते हुए कहा, फिर तो दादू कहेंगे कि सारी तपस्या एक ही दिन में भंग कर ली। हा हा हा, आकांक्षा ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, चलो अब नीचे चलते हैं, वरना ना तो हम उसकी शादी में जा पाएंगे और ना ही शॉपिंग करने। यहाँ इतनी ठंड है कि यहीं पर जमकर रह जाएंगे। सही कहा, अगली बार यहाँ नहीं आऊंगा, इस बार जंगल में जाऊंगा, फिर ढूंढते रहना मुझे जंगली जानवरों के बीच में। त्रिशान और आकांक्षा हंसते हुए पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। पहाड़ से नीचे आने के बाद आकांक्षा और त्रिशान राजपुरोहित जी के पास गए और उनसे शॉपिंग करने की इजाजत मांगी। उन्होंने भी बिना रोक टोक उन दोनों को सभी चीजों के लिए हाँ कह दी थी। शाम की 6 बज रहे थे। त्रिशान और आकांक्षा बाजार से खरीदारी करके वापस आश्रम आ गए थे। उन्होंने वहां से काफी खरीदारी की थी। दोनों आकांक्षा के कक्ष में बैठे थे और अपनी अपनी चीजें अलग करते हुए बातें कर रहे थे। चलो फाइनली दादू ने मोबाइल के लिए भी हाँ कह दी। त्रिशान ने अपने मोबाइल फोन में सिम कार्ड डालते हुए कहा, हाँ अब तक तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी और सच कहूँ तो काफी रिलैक्स भी महसूस होता था। आकांक्षा ने अपना फोन ऑन किया और कहा, बहुत दिन हो गए जानवी से भी बात नहीं हुई, चलो उसे कॉल करते हैं। ऐसा करती हूँ वीडियो कॉल कर लेती हूँ, इसी बहाने देखना भी हो जाएगा। मुझे नहीं देखना उसे, त्रिशान ने मुंह बनाते हुए कहा। आकांक्षा ने उसकी बात को इग्नोर किया और जल्दी से जानवी को वीडियो कॉल किया। त्रिशान उससे थोड़ा दूर बैठा था ताकि जानवी उसे देख ना सके। हेलो, आकांक्षा ने हाथ मिलाते हुए कहा, कैसी है तू? और तू शादी कर रही है और मुझे अब बता रही है? हाँ, तुझे अपने आश्रम और अपनी शक्तियों के अभ्यास से फुर्सत मिलेगी तब तो तुम मुझसे बात करोगी ना, जानवी ने धीमी आवाज में कहा। आकांक्षा ने देखा कि जानवी काफी उदास नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर शादी या नए रिश्ते जुड़ने की वो खुशी नजर नहीं आ रही थी जो अक्सर दूसरी लड़कियों के चेहरे पर होती है। क्या हुआ तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, आकांक्षा ने उसे उदास देखकर पूछा। और ये शादी का क्या चक्कर है? माना कि हमारी ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन 3 महीने पहले जब हमारी बात हुई थी तो इस बारे में तुमने कुछ नहीं बताया था। फिर अचानक से तुझे एक लड़का भी मिल गया और तू उससे शादी भी कर रही है।
मुझे कोई लड़का नहीं मिला, पता नहीं मॉम डैड ने किस नमूने को ढूंढ लिया और मेरी शादी फिक्स कर दी। सच कहूँ तो मुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जानती हो ना मॉम डैड को, उनके हिसाब से उनका ढूंढा हुआ लड़का बेस्ट होता है और वो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं। मुझे तो कोई लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जानवी ने थोड़ा नाराज होकर कहा। जैसे ही त्रिशान ने ये सुना कि उसे वो लड़का पसंद नहीं है, उसने आकांक्षा को थोड़ा साइड किया और कॉल के सामने आते हुए कहा, क्या सच में? डोंट वरी, मैं वहां आऊंगा और अपनी सुपर स्पीड में तुम्हें अपने साथ यहां ले आऊंगा। लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा, इन सबको छोड़ो, तुम दोनों शादी में आकर बताना कि लड़का अच्छा है या नहीं, आगे का बाद में डिसाइड करेंगे। अच्छा, आगे की बातें मिलकर करते हैं, जानवी ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करते ही त्रिशान ने बोला, तुम्हारी फ्रेंड कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। लास्ट टाइम मुझे कहा था कि मुझे पसंद तो करती है लेकिन शादी नहीं कर सकती, और अब जिससे शादी कर रही है उसे पसंद नहीं करती। इसका कुछ करो वरना। काम डाउन, अब तो वहां पर चलकर ही बात होगी, आकांक्षा ने कहा और फिर से पैकिंग करने में बिजी हो गई। सारी पैकिंग होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और त्रिशान अपने कक्ष में सोने के लिए चला गया। त्रिशान के जाते ही आकांक्षा हमेशा की तरह सोने से पहले रिवांश के बारे में सोचने लगी। पहले जहां उसे सपनों में भविष्य दिखाई देता था, अब आश्रम में ध्यान केंद्रित करने और अन्य कुछ प्रक्रिया सीखने के बाद वो जब चाहे तब भविष्य और वर्तमान देख सकती थी। उसने अलीजा से मंत्रों के जरिए कुछ छोटे मोटे जादू करना भी सीख लिया था, तो वहीं त्रिशान ने उसे कुछ मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग दी थी। मैंने इन 3 सालों में खुद को बहुत बदल दिया, मेरे हिसाब से मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये किया है वो कब मिलेगा? अगर मेरा जन्म शैतान को उसके मकसद में कामयाब होने से रोकना है तो उसका मकसद रिवांश को नरक की गद्दी तक पहुंचाना है। कहाँ हो तुम रिवांश? राजपुरोहित जी ने तो कहा था कि तुम जन्म ले चुके हो, अगर ऐसा है तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? पिछले 3 सालों में हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा? आकांक्षा ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने रिवांश का चेहरा घूमने लगा। उसे वो वक्त याद आने लगा जब रिवांश उसके सामने उसे मारने के लिए गिड़गिड़ा रहा था और उसकी बात मानकर उसने उसे मार भी दिया था। रिवांश से दूर होने से ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की होती थी कि उसने खुद उसे अपने हाथों से मार दिया था। हमेशा की तरह कुछ अच्छा होने की उम्मीद में आकांक्षा सो चुकी थी। क्रमशः